नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों को मिलाकर नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने के दावे को पूरी तरह खारिज किया। केंद्र ने पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी की किल्लत से जुड़ी खबरों को निराधार बताया, कहा देश में ईंधन का पर्याप्त भंडार है। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा, राज्य में गठित होने वाली नई सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही काम करेगी। और गया जी स्थित सैन्य अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में 28वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन, देश को 28 महिला समेत 281 नए सैन्य अधिकारी मिले। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों को मिलाकर नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने के दावे को पूरी तरह खारिज किया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह दावा पूरी तरह से तथ्यहीन और सच्चाई से परे है। उन्होंने लोगों से ऐसी कोई भी भ्रामक जानकारी साझा नहीं करने की अपील की है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में ईंधन का पर्याप्त भंडार है और सप्लाई चेन सामान्य रूप से चल रही है। सरकार ने उन दावों को खारिज किया है जिसमें कहा जा रहा था कि कुछ स्थानों पर पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी की किल्लत हो रही है।
परेशान मत होइए, गाड़ी लेकर पेट्रोल पंप मत भागिए और ना ही सिलेंडर वाले भैया को सिलेंडर के जुगाड़ के लिए फोन करिए। सरकार पहले से सतर्क है और सारे इंतजाम कर लिए गए हैं आपके लिए। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी और एलपीजी की कहीं कोई कमी नहीं है। सरकार ने आज साफ साफ कहा है कि हमारी प्राथमिकता अपने नागरिकों के लिए सस्ती और सतत ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है और हम इसे सुचारू रूप से कर रहे हैं। भारत में ऊर्जा की कोई कमी नहीं है और हमारे ऊर्जा उपभोक्ताओं के लिए चिंता की कोई बात नहीं है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के पर्याप्त भंडार उपलब्ध हैं और आपूर्ति व वितरण नेटवर्क सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं। नागरिकों को आश्वस्त किया जाता है कि किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम बिना रुकावट ईंधन सप्लाई देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कृपया अफवाहों पर भरोसा न करें और आधिकारिक जानकारी ही शेयर करें।
जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा है कि राज्य में गठित होने वाली नई सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही काम करेगी। श्री झा आज पटना में पार्टी जिलाध्यक्षों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्यसभा सदस्य बनने के बाद भी नीतीश कुमार अपना अधिकांश समय बिहार को देंगे।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बहुत लोग को लगता है कि वो राज्यसभा जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी 25 से 30 तक जो सरकार चलेगी बिहार में, उसमें उन्हीं के मार्गदर्शन में बिहार की सरकार चलेगी। उन्होंने लिखा भी है और उन्होंने बोला भी है कल के बैठक में, उनके मार्गदर्शन में सरकार चलेगी। पार्टी का काम वो देखेंगे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस सरकार को गाइड करेंगे। जो सरकार चलेगी यहाँ पर, उनके लोग इस सरकार में रहेंगे।
श्री झा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार कल आधिकारिक तौर पर जदयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी उनकी भूमिका तय करेगी। श्री झा ने बताया कि निशांत कुमार आज जिलाध्यक्षों की बैठक में भी शामिल हुए।
हम लोगों ने ये तय किया कि पार्टी में आकर के निशांत जी काम करेंगे और जैसे मैंने बताया कल उनकी ज्वाइनिंग है। पार्टी का कामकाज कल से शुरू करेंगे, आगे पार्टी तय करेगी कि उनकी क्या भूमिका हो। जदयू का जो नीतीश कुमार जी का कामकाज है और उनका जो लेगेसी है, पार्टी के लिए एक बड़ी जिम्मेवारी है कि नीतीश जी के नेतृत्व में उनके कामकाज लेगेसी को आगे ले जाना और उनका जो एक संकल्प है जो उन्होंने इस चुनाव में प्रॉमिस किया था बिहार के जनता कि 25 से 30 में एक विकसित फाइनल जो टॉप 10 स्टेट में बिहार को ले जाना है वहां ले जाना है।
इधर बैठक के बाद विधायक राजेश कुमार मंडल ने बताया कि निशांत कुमार जल्द ही पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे। उनकी यात्रा की शुरुआत चंपारण की धरती से होगी।
कल के बाद जो है वो जिला में भ्रमण करने जा रहे हैं और तारीख की नहीं लेकिन जगह की घोषणा हो चुकी है। जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूर्वी चंपारण गांधी की धरती से जो कोई भी कार्यक्रम शुरुआत करते हैं उसी तरह वो भी वहीं से।
बिहार में तेजी से बदल रहे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज लोक भवन जाकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। यह मुलाकात लगभग 10 मिनट चली। बताया जा रहा है कि विधायक प्रोटोकॉल के तहत मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिलने पहुंचे थे। इधर नागालैंड के नवनियुक्त राज्यपाल नंद किशोर यादव ने भी आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोक मोर्चा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस दौरान जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा भी मौजूद थे। नागर उड्डयन मंत्रालय ने सारण जिले के सोनपुर में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को साइट क्लीयरेंस की स्वीकृति दे दी है। स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रूडी ने बताया कि मंत्रालय के सचिव समीर सिंह के नेतृत्व में उच्च स्तरीय समिति ने कई स्तरों पर विचार विमर्श और तकनीकी परीक्षण के बाद परियोजना को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि अब परियोजना के अगले चरण की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके तहत RFP जारी की जाएगी, कंसल्टेंट की नियुक्ति होगी और DPR तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना के अथमल गोला में निर्माणाधीन बख्तियारपुर ताजपुर पुल परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज के पास रेल ओवर ब्रिज और श्री गणेश हाई स्कूल भवन निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को काम तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। राज्य सरकार ने कहा कि अवैध होर्डिंग और बैनर लगाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास और आवास विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकारी राजस्व की हानि करने वालों से आर्थिक अपराधियों की तरह निपटा जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी 264 नगर निकायों में अभियान चलाकर 11,000 से अधिक अवैध होर्डिंग के मामलों में कार्रवाई की गई और 20 लाख रुपए जुर्माने की राशि वसूली गई है। नेपाल के आम चुनाव में बालेंद्र शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी RSP भारी जीत की तरफ बढ़ रही है। RSP ने अब तक 44 सीटें जीती है, जबकि पार्टी 76 निर्वाचन क्षेत्रों में आगे चल रही है। नेपाली कांग्रेस को अब तक 6 सीटों पर ही सफलता मिल सकी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना पर जा सकते हैं। गया जी स्थित सैन्य अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी से आज देश को 281 नए सैन्य अधिकारी मिले हैं। इनमें 28 महिलाएं हैं। भारतीय सेना में दक्षिणी कमान के लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने 28वीं पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ ने नए कमीशन प्राप्त अधिकारियों से भारतीय सेना के मूल्यों और परंपराओं को बनाए रखने का आग्रह किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
सभी ऑफिसर्स कैडेट के लिए आज का दिन काफी ऐतिहासिक रहा। साहस और अनुशासन के बीच बेहतर कदम ताल के साथ परेड में कौशल प्रदर्शित करते हुए कैडेट्स ने समारोह में उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बड़ी संख्या में पासिंग आउट परेड देखने के लिए कैडेट के परिजन OTA गया जी पहुंचे हुए थे। जैसे ही परेड संपन्न हुआ, कैडेट्स और उनके परिजनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कमीशन प्राप्त करने वाले कुछ कैडेट ने आज के दिन को अपने जीवन का सबसे खूबसूरत पल बताया।
मेरा नाम लेफ्टिनेंट कुलदीप है। आज मैंने पासिंग आउट परेड को कमांड किया। इसके साथ मैं सॉर्ड ऑफ ऑनर और सिल्वर मेडलिस्ट भी हूँ। मेरी तो मेहनत थी, बट मेरी मेहनत से ज्यादा मेरे इंस्ट्रक्टर्स की मेहनत थी, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया और इस मुकाम तक पहुँचाया। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक्स माई पेरेंट्स फॉर स्टैंडिंग बिसाइड मी।
मेरा नाम लेफ्टिनेंट राशि बलूनी है। मैं आज कोर ऑफ EME में कमीशन हुई हूँ। मैं पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, एक नई जर्नी का मतलब की शुरुआत है।
समारोह में प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारी कैडेट्स को सम्मानित किया गया। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
आज जन औषधि दिवस है। जेनरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए यह दिन मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने इस पहल का समर्थन करने के लिए पूरे देश में सप्ताह भर की गतिविधियां आयोजित की हैं।
प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के अंतर्गत बाजार की तुलना में 50-80% कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध कराई जाती है। यह उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए केवल प्रमाणित निर्माताओं से खरीदी गई दवाइयां प्रदान करती है। इस पहल के तहत शुरू की गई कई प्रमुख पहलों में से एक सुविधा सैनिटरी नैपकिन है। देश के सभी जिलों में लगभग 18,000 जन औषधि केंद्र चालू है और इस योजना ने स्वरोजगार के लिए भी आशाजनक अवसर पैदा किए हैं। समाचार कक्ष से सत्यम कुमार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना से लाभान्वित लोगों को बधाई दी। इधर जन औषधि दिवस पर पटना समेत जिला मुख्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर आज प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुंगेर में जिला प्रशासन की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। सुपौल के वीरपुर में एसएसबी की ओर से फिट इंडिया मूवमेंट के तहत बालिकाओं के लिए 5 किलोमीटर दौड़ का आयोजन किया गया। बिहार ग्रामीण बैंक की महिला अधिकारियों द्वारा पटना में सांस्कृतिक कार्यक्रम सह महिला जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष मुकुल सहाय ने किया। पूर्वा हवा के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई है। 34.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ राजगीर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि न्यूनतम तापमान में क्रमिक रूप से बढ़ोतरी होगी।
अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। अगले 2 दिनों के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है।
इधर विभाग ने कहा है कि 9 मार्च से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से 11 मार्च तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश हो सकती है। इस दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने सीतामढ़ी के सुरसंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी कृष्णा राम के सीतामढ़ी पटना और पूर्वी चंपारण जिले के 5 ठिकानों पर छापेमारी की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये कार्रवाई की गई। किशनगंज जिले के बहादुरगंज थाना क्षेत्र में NH-327 पर एक चारपहिया वाहन और मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों को मिलाकर नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने के दावे को पूरी तरह खारिज किया। केंद्र ने पेट्रोल डीजल एलपीजी सीएनजी और पीएनजी की किल्लत से जुड़ी खबरों को निराधार बताया। कहा देश में ईंधन का पर्याप्त भंडार है। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा राज्य में गठित होने वाली नई सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही काम करेगी। और कयाजी स्थित सैन्य अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में 28वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन। देश को 28 महिला समेत 281 नए सैन्य अधिकारी मिले। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।